कलालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो इन्द्रस्य तृतीय ज्ञान अपना दोष दिखने लग जाएगा। इस दोष के कारण हमारा भजन नहीं हो रहा है। जब दिखना आरंभ हो जाएगा तब ये करीब करीब मध्यम अधिकारी में आता है। तो जब ऐसा होगा तब वो देखेगा कि हमारा सहारा कुछ भी नहीं, मैं तो अत्यंत अयोग्य, निराश्रय, पाखंडी, दग्धी, जितने अवगुण हैं संसार के हमारे अंदर में पढ़ने लगेगा और उसे अनुभव होगा। तब वो जब एक आदमी समझ रहा है कि मैं डूब रहा हूँ पानी में, तब तो उसको सहारा की जरूरत है ना, पहले ही सहारा की जरूरत है। डूब नहीं रहा है तो सहारा की क्या जरूरत। इसलिए कोई यदि व्यक्ति यह समझता है कि मैं डूब रहा हूँ, तो जहाँ उसको थोड़ा सा भी तिनके का भी सहारा मिलता है तो उसको पकड़ता। उसी तरह से जो यदि कोई व्यक्ति समझता है मैं सर्व गुणों से हीन, मैं सब प्रकार से अयोग्य, मैं बहुत पापिष्ट, मैं कामी, क्रोधी, लोभी, भोगी सब, तब हमारा सहारा नहीं है, भजन करने का हमारा कोई भी अवलंबन नहीं है। तब निराशय होकर के तब भगवान के चरणों में शरणागत होता है, गुरु वैष्णव के चरणों में शरणागत होता है। उसके पहले जो शरणागत होते हैं वो ठीक शरणागत नहीं है, ऐसा समझने के बाद में तब शरणागति। अच्छा, ये शरणागति कैसे होगी? वो जो बतलाया गया तिना दपी सुनी चेन करो रिव सही सुना, तो ये तिना दपी सुनीच में ये है, उसका आंशिक ये चार है ना, चारों में से ये पहला। जब पहला आएगा तिना दपी सुनीच, तो सुनीच के समय में यदि थोड़ा सा भी उसका अंश किसी में आया सुनीच होगा, तो ये नीचता क्या है वो अपने आप उपलब्धि करेगा। मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं संसार में आसक्त हूँ, मैं बड़ा दुर्वचन बोलने वाला, ये सब जितने दुर्गुण हैं उसको उपलब्धि होगी बिना दीप समीज के से। तभी तो वो दिन ही होगा ना, तो होगा कहाँ? वो दिन ही कहाँ पर होगा? जो सबसे बड़ा वस्तु है भगवान, अत्यंत दिन ही उनको चरण में होकर के शरणागत होने के लिए प्रार्थना करते। इसलिए अब तक हम लोग जितना कहा भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया, ऐसे ही भाव में दिया और ले करके भगवान के चरणों में शरणागत तखन यही सब बुरी निजे की उपलब्धि। यही उपलब्धिता, ये उपलब्धि नरोत्तम ठाकुर जी का, यही उपलब्धि भक्ति विनोद ठाकुर, माधवेन्द्रचंद दास, माधवेन्द्रपुरी पाद, ये सब उपलब्धि का पूरा उपलब्धि। ठीक ठीक है, हम लोग अभी नहीं उपलब्धि कर, हम ही एक पिछु आछी ওরা নিজেকে মুক্ত কোনো দিন মনে করে, ওরা মুক্ত মনে করে নিজে মুক্ত করে মনে না, জানন্তে এও জানন্ত, ওই শ্রেণী মধ্যে এসে যারা মনে করে যে সে আমি জানি, আমি জানি, কিছুই জানি, আর যে বলে যে আমি কিছুই জানি না, তাহলে উপলব্ধি করে বলছে, তাহলে কিছুর একটা ধারণা আছে, কিছু এক চিজ কি ধারণা। हम लोगों को अभी यथार्थ उपलब्धि नहीं होती, जो हम दीन, इसीलिए क्रोध होता है, एक आदमी समझ रहा है कि मैं बहुत दरिद्र हूँ, हमारे पास में कोई शक्ति नहीं है, हमको अभी पीट देगा तो उसको क्रोध होगा, क्रोध होगा उन्हें से भी दबा देगा, ये मैं तो दिन अभी कुछ करेंगे तो और थप्पड़ लगेगा, इसलिए उसको नहीं होगा। आज जिसको कुछ है अभी ऐंठ है वो ऐसा था, इसलिए इन लोगों में यथार्थ उपलब्धि, मैं दीनहीन क्षुद्र हूं, इसलिए यदि कहो तो ये कपटी हो जाए, ये कपटी नहीं, ये सच सच में अनुभव करके कह रहे हैं। हम लोग इस स्थिति में अभी नहीं है जो सच सच उपलब्धि करते थे, ऐसा अभी छिपाने की चेष्टा करते, कुछ यदि मालूम ही लिया ऐसा कुछ तो छिपाएंगे हम, जब तक छिपाएंगे जब तक कि हम अच्छी तरह से मैं चेष्टा कर लेंगे, जब नहीं छिपेगा तो दूसरी अभी सब छिपाने की चेष्टा कर। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी जमुना स्तोत्र, ये यमुनाचार्य मुक्त महापुरुष हैं, अलवर कहलाते हैं, अलवर माने सिद्ध महापुरुष, तब ये कह रहे अमर जादव क्षुद्र चलमती असूया प्रसवभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर्वसु रक्षण पर विशंसा पापिष्ट कथम अहम अमितो दुख जलदे अपाराद्युत्तीर्ण तव परिचरेयम् कथम परिचरेयो परिचरेयम् चरणयो अमित चंचलमति, मैं चंचलमति, मैं चंचल भगवान का भजन में मन नहीं लगता, अनुभव करके कर चंचल मत, कहाँ पर मति है, कहते हैं बार्धक्य एक हों सर्वेंद्रिय दुर्बल खीन कलेव भोगाभावे दुखित अंतर, भोगाभाव मैंने क्या दांत टूट गया है, चना चिबा नहीं सकता तो चना दे करके लोग होता है, रसगुल्ला खाएंगे तो डायबिटीज है खा नहीं सकते, यदि रसगुल्ला खाया तो डायबिटीज बढ़ जाएगी मरेंगे, उसी तरह से तेल में के जो भाजे हैं ना मिर्च और नमक के साथ में वो खाएंगे, खाने की खूब लालसा हो रही है, उसको तवे पर भाजेंगे गरम गरम खाएंगे और वो खाते ही पेट तो खराब है, उदरी रोग हो गया है, जल जमने लगा है पेट में, अब मरने वाले हैं तो वो खाएंगे तो अभी कल मरने वाले थे आज ही मर गए, खा नहीं सकते, इसलिए भोगा भावे दुखित अंतर, भोग करने की इच्छा है, खाने की पहनने की ये सब, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं उसी को दिया अमित चंचलमति, चंचलमति अभी संसार का ये काम करो, अभी रुपया पैसा संग्रह करो, ये करूँ वो करूँ, सब हजार तरह के काम, और कभी थोड़ी सी इच्छा आती है जो भगवान का भजन करें, अच्छा तो भगवान का भजन पीछे करें, पहले इसको कर, ऐसे अभी भी हम लोगों के यहाँ जो अनावश्यक काम है उसको कर्तव्य मान लो, भगवान का भजन करना है ना, अच्छा तो पहले पैखाना उखाना हो आए, पेशाब उशाब कराए, अच्छा इसके बाद में भजन कर, तो ये हो गया तो तब भूख लगी है तो कहे थोड़ा सा भी प्रसाद पा लो, थोड़ा सा जल पान कर, तब इसके बाद में इतने में कुछ जल पान कर लिया तो थोड़ा सा आलस्य आने लगा, अच्छा तो थोड़ा सा भी शाम कर, इसके बाद में जब उठ करके करें, इतने में दो आदमी अच्छा तो उनसे बातचीत कर लो तो भजन कर, इसके बाद में जब वो आदमी चला गया ना तब फिर कुछ लग गया काम, बस ऐसे ही करते करते भजन में शामिल, इसलिए चंचल मत। अमर जात क्षुद्र अति अमर जात, मर्यादाओं को सबको तोड़ दिया है, सच की मर्यादा सच्चरित्रता की मर्यादा और जितनी चीज की कपटता, सरलता की मर्यादा, सबकी मर्यादा को तोड़ दिया है, हम मर जा रहे हैं। असुआ प्रसव सदाम, असुआ असुआ मैंने दूसरे को उत्कर्ष देकर और मनी मन मरते हैं और उसकी यात्रा भंग कर दे, वो जा रहा है तो अपना नाक काट करके दरवाजे पर खड़ा हो गया, किस लिए काट दिया जी उसकी यात्रा भंग हो, ऐसा ऐसा ईर्ष्या होता है। असूया, असूया में दूसरे का उत्कर्ष देख करके हमारे हृदय में दाह ईर्ष्या जो होती है, असहिष्णुता होती है, वो असूया हमारे अंदर में हमसे कोई किसी विषय में न बढ़ जाए। पापिष्ट, पापिष्ट माने क्या, पाप इष्ट, पाप में ही, पाप ही हमारा इष्ट हो गया है, पाप से ही हमारा काम है, ये हमारा इष्ट। जैसे इष्ट कोई अच्छी चीज, इष्ट भगवान होते हैं ना, तो उनका पाप ही इष्ट हो,
पापियों में श्रेष्ठ बड़ा पाप,
वही एक ही पाप ही है इष्ट। कृतघ्न, कृतघ्न कोई उपकार किया उसको काट देना, कृतघ्न काटना माने क्या, नहीं मानना, उसका विपरीत करना, जो यदि हमारे लिए उपकार किया तो इसका अपकार करना चाहिए, नहीं मानना उपकार का, माता पिता का उपकार नहीं मानना, गुरुजनों का उपकार नहीं मानना, राजा का उपकार नहीं मानना, ये सब जितने उपकार हैं, माता पिता, ऐसा कौन व्यक्ति है जो माता पिता का ऋणी न हो, किंतु उनके ऋण को नहीं मानना, ये भी गुरु जी का सबसे अधिक उपकारी है। यदि गुरु और शिष्य का संबंध हुआ तब तो, अभी हुआ ना तब तो फिर क्या होगा, वो समझे जैसे हाँ मैं गुरु जी का ऋणी हूं, आभारी, और नहीं तो मानेगा जैसे समान अंतर, समान अंतर, वो भी एक हम भी एक, तो ऐसा नहीं, इसलिए कृतज्ञ, मैं कृतज्ञ हूं। गुरु वैष्णव ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, गुरु जी वैष्णव ने हमारे लिए क्या किया, किसने हमारे लिए किया, जो कुछ हुआ भगवान की इच्छा से अपने आप मुझसे हो गया, किसी का नहीं, वही कृतज्ञ। मानी, मानी माने अभिमानी, संसारिक जितने भी अभिमान के कारण है उन सबको उससे अभिमान हो गया, धन का, विद्या का, उच्च कुल में जन्म का, सौंदर्य का, विद्या का, ये सब अपनी बुद्धि का, निशंस, निशंस माने क्या,
उत्ताचारी,
नृशंस, नृ माने मनुष्य को काटते हैं, जिसमें मनुष्यत्व है वो सबको काटते हैं, मनुष्यत्व ही को काटते हैं, छेद, संस माने छेद, मनुष्यत्व को एकदम काट देना, ये निशंस। और ज्ञानी, किस चीज में ज्ञानी, वंचने ज्ञान, किसी को वंचन करने में बड़े ज्ञानी, ऐसे बातचीत करेंगे, झूठ बात को भी सत्य कह देंगे, इसमें बड़े दक्ष हैं, चतुर, बात को छिपाने में, कपटता करने में, धूर्तता करने में, जो हमने किया वही सब ठीक है, इस सब विषय में बड़े ज्ञानी, वंचने आत्मज्ञान, भक्ति विनोद ठाकुर दूसरे को नहीं कर रहे, अपने को कर रहे, सब अपने को। ये सब दुर्गुण हमारे अंदर में है। काम वर्ष था कि सदा घो, और कामनाओं के वश में सब समय हूं। एहन दुर्जन है, ऐसे दुर्जन हो करके ए दुख जलधि बोए, ऐसे दुख का जो अथा अनंत दुष्पार तट रहित जो समुद्र है उसमें हम चल रहे हैं। बोए बोए मैंने बह जा रहा हूँ, बहा जा रहा, कैसे बह रहा हूँ, धारा में पड़ करके बह रहा हूँ। चलती ची संसार सागर, संसार सागर में जन्म और मृत्यु के प्रवाह में चल रहा। हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये संसार रूपी संसार सागर में हम लोग ऐसे बह रहे हैं, जन्म मरण के नहीं मालूम होता है, हैं? देख रहे हैं उसमें जो बुद्धिमान है वो तो समझ जाएंगे, जैसे पार होना चाहिए उसके लिए बड़ा दुखी होगा, और समय भी बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा समय रह गया है, शाम हो गई है। वो श्लोक क्या पढ़ रहे हैं, दिना परीक्षा ये दिना
परीक्षा,
वो शाम हो गई। किस चीज का शाम हो गया, हमारा जीवन रूपी सूर्य के लिए वो
जीवन छाया।
अब ये शाम माने हमारा इतना कोटि कोटि जन्म गया उसकी शाम है, इसमें हमने अपना मंगल नहीं कर दिया। अब कितना दिन है अनंत काल में से, अब थोड़ा सारा गया है, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30, किसी का एक दिन, किसी का एक दिन भी नहीं, कोई ठीक नहीं है जीवन का। और हम लोग आराम के साथ में चलते मैंने ये भावानुबुद्धि या भावबुद्धि, संसार सागर अनंत है, पार होव निरवधि, मैं कैसे जल्दी से जल्दी इसको पार होऊंगा, तो पद सेवा मिले, कैसे आपके चरणों की सेवा मिलेगी, मैं कैसे भव सागर को पार कर जाऊंगा। इसलिए आदमी भगवान के चरणों में शरण। तो हम लोग ऐसा करके और समझ करके आए हैं कि नहीं, उपलब्धि कुछ है कि नहीं, इनको उपलब्धि हो गई इसलिए इनको हम मुक्त कर रहे हैं, हम लोगों को उपलब्धि नहीं, हम लोग अनुमान कर रहे हैं। अनुमान माने वो कहते हैं ना, कौन सी भक्ति पहले,
आरोप
सिद्धांत, आरोप से वो तुम्हारे पीछे कौन है, नौका में चढ़ गया है
ना,
ऐसे हम लोग आरोप कर रहे हैं, किंतु ये पता नहीं है ये सचमुच में इसमें हम पड़े हुए हैं। क्यों, माया की, माया के द्वारा हमारी अज्ञानता से समझ नहीं है। एक बकरी को या एक भेड़ को बलि देने के लिए ले जा रहा है एक व्यक्ति ना, और हाथ में कुछ घास रखा है, और घास ऐसे दिखला रहा है, और उसका मैं भें करता हुआ वो चल रहा है, और उसको ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है, अभी उसका अंतिम समय है, अभी ले जाएगा, पकड़ करके उसे हलाल कर देगा, किंतु उसको मालूम नहीं, वो देख रहा है हरी घास और बड़े प्रेम के साथ में खाने के लिए दौड़ रहा है, उसको ये सब का पता नहीं। हम लोगों का भी ऐसा ही है, माया हरी घास दिखला रही है, हरी घास में निकला यही संसार का जो विषय है, हरा घास है दिखला रही है, और सोच रहे हैं कि ये घास खाना ही हमारे जीवन का सबसे प्रथम और प्रधान कर्तव्य है। यदि वो जल्दी से घास खाना छोड़ करके पीछे भाग करके मुड़ करके भग जाती और ये पकड़ नहीं पाता, तब तो एक प्रकार से उद्धार हो जाता, किंतु वो तो आसक्त होकर के उसी के घास खाने में लगी, किंतु हम लोगों को ये पता है। ऐसे ही हम लोगों को देह आराम था, देह में और सब कुछ नहीं, तो देह में आराम, क्या क्या सब ये संसार एकांतिक रूप में भगवान की तरफ में।
अलग
इसलिए हम लोगों का समान नहीं है, कोई थोड़ी चेष्टा करता है, कोई उससे भी कम, उससे भी कम, कोई को हो रहा है न हो। और जहाँ उपलब्धि इस बात की होती ना, वो तो हाय हाय करते हुए भगवान के चरणों का कहाँ पर हमको सहारा मिलेगा। अभी कोई हम लोगों को मारने के लिए आए तो हम किसका सहारा लेंगे? अभी जो इसमें बलवान है, बुद्धिमान है, उसका हम सहारा लेंगे। अच्छा जाकर के उनको बुला लाओ, उनको बुला लाओ कहीं, किंतु असल में सहारा कौन है? प्रभु। उनका सहारा हम लेते हैं किंतु नहीं ले पाते हैं, और न लेने की जरूरत अभी है। यदि शरणागत भी होते हैं तो इस तरह से कि हमारा जो दुख है संसार का थोड़ा बहुत वो दूर हो जाए, हमारे सुख की वस्तुएं मिल जाए, बस इतना ही। और जिनको सत्य सचमुच में ऐसा हो गया वही वैराग्यवान वैराग्य हो गया और भगवान का चरणों का शरणागत हो जाता है। तो ये हो गया, शरणागत हुआ। कैसे हुआ? अमानित्व, मान, क्या मान होगा? हमारे अंदर में ये सब दुर्गुण भरे पड़े हैं, इसलिए तो भगवान के शरणागत। हम लोगों को भी ऐसे ही पक्के रूप में भगवान के चरणों का शरण। हम भक्तों का मान देने के संबंध में कहते हैं, ये कब देगा उसके लिए वहीं पर जामुन भावावली में भक्ति विनोद ठाकुर जी का, तब दास्य सुखैक संगिनां भवनेष्वपि कीट जन्म में इतरा वसा वसथेषु माश्म भूदपि जन्म चतुर्मुखात्मना। इसका साधारण अर्थ, तब दास्य सुखैक संगिनां, आपकी सेवा करते करते जो सेवा सुख में मग्न है, तत्पर है, ऐसे भक्तों के घर में भवनेषु त्वपि कीट जन्म, आपके दास्यों दास्य भाव में अर्थात आपकी सेवा करते करते जो लोग आपके जन्म में और आनंद में हैं, आपकी कथा में, आपके नाम में, आपकी सेवा में, ऐसे भक्तों के घर में यदि हमारा मृत्यु भी हो जाए, इतना दुर्गुण है हमारे ऊपर वाला, और इतना दुर्गुण होते हुए प्रभु अब मैं आपके शरणागत आ गया, प्रभु ने कहा अच्छा वर मांगो क्या चाहते, प्रभु मैंने इतना पाप किया, ये सब हमारा तो जन्म होगा ही, तो जन्म हो तो कहाँ हो, तो वही कहते हैं भक्त गृह जन्म हो मो कीट जन्म हो जथा भुआ दास, बहिर्मुख जन्म ब्रह्म जन्म नहीं। यदि जन्म हमारा हो तो कहाँ हो, आपके जो सेवक वर्ग हैं उनके घरों में मैं कीड़े मकोड़े बिल्ली कुत्ते जो कुछ भी हो मैं उनके घर में, तो उससे लाभ क्या होगा, कभी ना कभी खा करके कुछ, यदि जोर से कीर्तन करेंगे तो उनका कीर्तन सुनेंगे, यदि हरि कथा हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ हमारे में, यदि और कुछ नहीं होगा तो वो चलेंगे तो उनकी चरण की धूली तो लगी जाएगी, इसलिए उनके घर में हमारा जन्म। हम लोग का सौभाग्य जी यहाँ पर है, एक तो कृष्ण की पदधूली पदधूली यहाँ पर उद्धव भी रहते हैं, जबकि उद्धव जी आए ब्रज में गए और वहां से आए तो जब यहाँ आए ना तो उनकी चरण धूली यहाँ आई कि नहीं आई, और पानी से अपने चरण धो दिए वो धूली तो यहाँ की धूली में मिल गई, अब यहाँ से उतर के नहीं जाएगी तो यहाँ पर भी उनकी चरण की धूली ऐसे जगह हमने स्वपी तू अपी कीट जन्म, हमारा कीट जन्म भी हो प्रभु मैं नहीं कहूंगा जी आप हमारा कीट जन्म मत दीजिए, किंतु वैष्णवों के घर में हमको कीट जन्म, यदि चूहा भी हो तो कहां हूं चूहा भी हूँ तो वहीं पर जो कुछ यदि कभी खा करके और थाला एक मिनट के लिए रह भी गया तो उसी थाले में से एक अन्न भी खा लिया, एक कुत्ता यदि चूहा भी हुआ। और इतरा इतर अवसत अवसथेषु माष्मो अभूत, दूसरी जगह में जो भगवान के भक्त नहीं हैं ऐसे घर में ब्रह्मा जैसे चतुर्मुख ब्रह्मा जैसी विभूतियां पा करके भी मैं सुखी रहना नहीं चाहता, वहां पर मेरा जन्म है। यहाँ तक कि चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में भी जन्म ले अथवा चतुर्मुख ब्रह्मा की जितनी विभूतियां हैं वो सब हमको मिल जाए तो भी मैं वहां पर जन्म लेना चाहता। किंतु वैष्णवों के घर में कुत्ता बिल्ली यहाँ तक कि पतंग जो कुछ भी हो वही पर जन्म। किंतु एक बात है, वैष्णव घर में कीट जन्म हो ये बात तो ठीक है, किंतु मच्छर मत मुझे मत बनाए
खटमल
या खटमल वैष्णव के घर में वो आपको कुछ उसको मिल जाए कपड़ा काट दिया कोई बात नहीं, किंतु ये मच्छर और वो क्या करेंगे
खटमल
खटमल वो वैष्णव को कष्ट देंगे, इसलिए वो मत तू मत बना। वेद विधि अनुसारे कर्म करी ये संसार है, वेद विहित कर्मों को कर करके अनुष्ठान करके इस संसार में जीव पुनः पुनः जन्म पाता है। वेद में जो लिखा गया ये सब कर्म है, ये अकर्म है, ये कुकर्म है, इसके अनुसार में अच्छा और बुरा जन्म मिलता है। ये हम किसी को देख करके वो ज्योतिष विद्या की जरूरत नहीं होगी, बुद्धिमान पुरुष वेद शास्त्र के अनुसार में निर्णय कर लेगा ये व्यक्ति पूर्व जन्म में कैसे कर्म किया और इस व्यक्ति का भविष्य क्या होगा वो भी इसी जन्म में। इसमें कैसा होगा या कैसा था इसी जन्म, अब हम लोग भी अपना विचार कर सकते हैं कि पहले कैसा था और भविष्य में कैसा होगा, हम लोग ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं शास्त्र के विचारों के।
जी प्रश्न जो विचार दिए सर, जो मनुष्य ने तीन जन्म में कौन से विचार करते
ये 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 हमने पढ़ा तो नहीं है, किंतु हम लोग अपने से यदि बुद्धिमान होंगे हमने पूर्व जन्म में कैसा कर्म किया और अभी हम भोग रहे हैं उसका अनुसार और अभी जो हम कर रहे हैं वो आगे के लिए हमारा तैयार हो रहा है फसल, कैसी फसल होगी ये तीन जन्म अभी से आदमी बुद्धिमान, इसको ज्योतिष और ये सब देखने की कोई भी जरूरत नहीं, अपने आप मालूम हो जाता है। इसी संसार में जन्म और मरण होता है। दुर्योधन ने पूर्व जन्म में कैसे कैसे कर्म किए होंगे, अच्छा प्रहलाद जी ने कैसे किए होंगे और प्रहलाद जी अभी जो कर्म कर रहे हैं उनका अगला फल क्या होगा, ये सब अपने आप निर्णय करके उसी के अनुसार में हम लोगों को चलना है। पूर्व कृत कर्म फले तुम्हार व इच्छा बले, पूर्व पूर्व जन्मों के फल से एक ये पूर्व पूर्व जन्म हमने वैसा कर्म किया और तुम्हार व इच्छा बले अथवा तुम्हारी इच्छा से, ये दो बात क्यों कहा बतलाओ क्यों कहा, एक बतला जो पूर्व पूर्व जन्म तत्त की तद कर्म के फल से या भगवान की इच्छा से समान एवात्म कृतम विभाग, तो उसमें बतला जो अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से जो हम फल पा रहे हैं अथवा भगवान ने ही कृपा करके ये ऐसे हमको दुख दिया है, ये दो प्रकार से क्यों कहते हैं, इसका कारण क्या है? दो प्रकार से यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, पूर्वकृत कर्म फले अथवा तुम्हार इच्छा बोले जन्म यदि लभी पुनराय। जन्म दो प्रकार से, एक भगवान की इच्छा से और एक पूर्व जन्म, तो ये दो क्यों लिखा?
भगवान की इच्छा से जो भक्त है शरणागत है, आज जो भगवान शरणागत नहीं है पूर्व कर्म फल जैसे ऐसे जन्म
दो
प्रकार के। एक हुआ हम माया में वशीभूत होकर के अज्ञानता से अच्छा या बुरा जो कर्म करते हैं उसके फल के अनुसार में जन्म, और दूसरा यदि किसी व्यक्ति ने जन्म लेकर के जैसा पापी हो या अच्छा हो बुरा हो वो वैष्णव के संग में आए और आकर के वो भजन करना आरंभ कर दिया, दीक्षा इत्यादि हो गई, अनुष्ठान की दीक्षा भी
प्रेम भक्ति दिए,
तो यदि ऐसा हो गया मैं तुम्हारा हूँ या वैष्णव के संग में आकर के जैसे तैसे दीक्षा लिया और भजन आरंभ कर दिया, पापी है सब कुछ नहीं और अभी तभी भी पाप कर रहा है किंतु अब भगवान का नाम लेना आरंभ किया, हरि कथा में आना आरंभ कर दिया, अब थोड़ा सा आने जाने, अब इसके ऊपर में कर्म फल के अनुसार में जन्म होगा कि नहीं? पहले वाले में तो होगा नहीं? जितना बड़ा भारी भी वो व्यक्ति हो, यहाँ तक कि ज्ञानी भी हो, योगी भी हो, सत्कर्मी भी हो, तो उसको कर्म फल के अनुसार में जन्म और मरण हो, और जिसने अत्यंत पापी भी हो करके, पापी भी था जगाई मधाई जैसा भी, और सत्कर्म नहीं करता किंतु भगवान का नाम आरंभ कर दिया और सोचा जी भगवान के नाम के द्वारा हमारा सब कल्याण हो जाएगा और हरि कथा सुनना आरंभ कर दिया और बोला जी प्रभु मैं जैसा हूँ आपका ही, बस क्या होगा? अब उसको जमदा का वो दंड भोगना पड़ेगा कि नहीं?
नहीं,
नहीं। अब उसको जमराज कहेंगे जे इसके पास में मत जाना, एक बार भी जिसका सिर भगवान के चरणों में निम्न हो गया दंडक प्रणाम दिया खबरदार, तान अन्न अनायाधम असतो अपि अकृत विष्णु कृत्या, जिन्होंने भगवान के लिए एक बार भी प्रणाम नहीं किया, उनकी कथा नहीं सुनी हो, उन वैष्णवों की वैष्णवों का संग न किया हो, भगवान का नाम न किया हो, उनका चरणों का स्मरण न किया हो, गंगा जमुना तुलसी का आश्रय न लिया हो, यदि न लिया तो ऐसे असत विष्णु के प्रति न किए हुए कर्म वाले व्यक्तियों को तुम ले आ, चाहे जितने वो धार्मिक और जितने बड़े हों उन सबको दुष्टों को पकड़ करके ले आ, और जिन्होंने एक बार भी इनमें से कोई भी कर दिया है जो रो करके कह दिया मैं प्रभु तुम्हारा, एक बार उनको प्रणाम कर दिया है,
कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय,
तो इस तरह से भगवान का यदि चरणारविंदों का चिंतन किया है फिर ये संसार वाले क्या उसको दंड देंगे? जम महाराज जो सबके दंड देने वाले वो ही नहीं दंड दे सकते तो ये सब लोग क्या दंड? ऐसा निर्भय होकर के, निर्भय होकर के भगवान का भजन, और जिसको इन सब बातों में विश्वास नहीं वो बिलबिला करके रोएगा, घर में रोएगी, कोई आशा नहीं, भरोसा नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, मैं मर गई मर गई, मैं मर गया मर गया, तो अभी भगवान उसको जम महाराज के अधीन नहीं करेंगे, यदि दंड भी देना होगा तो कौन दंड देगा? इसलिए उन व्यक्तियों का जो जन्म है भगवान के अधीन है और बाकी लोगों का जम के अधीन, इसलिए पूर्व कर्म कृत फले तुम्हार बा इच्छा बले, वो तुम्हारी इच्छा से भक्तों का जन्म और मरण और दुख होता है, और कर्म फल वालों के लिए कर्मी व्यक्तियों के लिए जम महाराज के विचार के अनुसार। यदि जन्म हमारा फिर हो तब एक कथा मम, तब एक बात हमारी सुनिए, वह पुरुषोत्तम, आप पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम क्यों कह रहा है?
पुरुषों में उत्तम,
अरे उनकी दया का संचार होने, पुरुष में साधारण रूप में बदला लेने की भावना होती है या जैसा करेगा वैसा ही फल, जैसे जज भी होना तो जैसा करेंगे वैसा। ये लोग अच्छे आदमी हैं, सज्जन आदमी हैं, दंड चुप माफ करते, अधिक नहीं देंगे, कम नहीं देंगे। और ये आप तो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में जो ये सब दुर्गुण राजस तामस ये आप में नहीं, आप तो है क्योंकि इसलिए हे पुरुषोत्तम। तब तो दास संगी जन भरे, आपके भक्त जो हैं उनके घर में कीट जन्म यदि है तहाँ ते वो दयामय रही बस हे संतुष्ट, मैं संतुष्ट रहूंगा आप उन वैष्णवों के घर में जन्म लेकर। आप तो दास संग ही और आपके दास नहीं है ऐसे जो संगहीन जो घर है से गृहस्थ अर्वाचीन, वो गृहस्थ और उनका गृह अर्वाचीन, अर्वाचीन माने समस्त दोषों का भंडार, अर्वाचीन माने सब दोषों का भंडार। तार गृह चतुर्मुख भूति, चार ब्रह्मा जैसी विभूतियां, ब्रह्मा जी की विभूति क्या है?
चार वेदों में पालन
हैं, ये सुंदर जगत हो जाए, जगत महत्त्व से अहंकार तीन बन गए, तीनों अहंकार से क्रमशः सृष्टियां होने लगी, उसमें अशक्ति इत्यादि आने लगी, इंद्रियां सब हुई, इंद्रियां से फिर गंध शब्द स्पर्श उनको मिला करके तन्मात्रा, तन्मात्रा से फिर ये शरीर, शरीर से ये सब विकार, ये सब विभूतियां। विभूतियां कैसी? उसने हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो उसको कैसा दे दिया? ब्रह्मांड की जितनी विभूतियां थी कभी नहीं मरेंगे, किसी के द्वारा नहीं मरेंगे, और विश्व ब्रह्मांड का ऐश्वर्य तुम्हारे चरणों में खेलेगा, किसी अस्त्र से नहीं मरेगा, किसी अस्त्र से नहीं मिलेगा, और 14 भुवनों का तू राजा बन जाएगा, ऐसी सब विभूतियां। कहते हैं कि ऐसी विभूति से युक्त मैं किसी जन्म में नहीं जाना चाहता जहां पर भक्तों का संग न मिले। बल्कि प्रभो आपने सुना है जो भरत जी को आपने जन्म दिया मृग के रूप, वो ऐसा ही हमको जन्म दे, वो भरत जी मृग होकर के अपने घर बार वालों को छोड़ करके और आश्रम में रहते, हरि कथा सुनते, गंगा का पानी पीते और बस कान लगा करके हरि कथा, उन्हीं का चिंतन करते। तुम्हारा कुकुर
ठाकुर, तुम्हारा कुकुर बोलिया जानो हमारे
प्रदीप जाने आश्रित ना
दिव्य,
मैं आपका कुत्ता होकर के रहूंगा, और यदि कोई प्रदीप जन माने
विरोधी
खग छली ऐसा कोई व्यक्ति आया तो मैं पहले ही जा करके हाँ हाँ करके उसका रास्ता रुकना आने नहीं दूंगा, गढ़ के बाहर भी रखूंगा उसको। और आप जब प्रसाद सेवन करके
प्रसाद से
छोड़ करके रख देंगे वही हमारे लिए परम आदर के साथ। ना चाहिए कखनो हरी कर द्वय जोड़ करी तब किंग कर मिनती करे तब किंग कर मिनती, मैं आपका किंग कर ऐसा ही आपके चरणों में प्रार्थना कर, ऐसे प्रार्थना करते हुए हरि नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्लोक पढ़ो, तो दास सुखैक संगिना भवनेष्वपि कीट जन्म मे इतरावसत्थेषु माश्म भूदपि जन्म चतुर्मुखात्मना हे प्रेम के साथ। और ये सब भाव आए, आत्मनिवेदन कैसे करेंगे? आत्मनिवेदन करेंगे जामुनी स्तोत्र में फिर बोल लेते हैं, बपुरादिशु ज्योपि कोपि वा गुणतो असानि यथा तथा विध तदयं तव पाद पद्मयो अरहम दैव मया समर्पित बपुरादिशु जोपि कोपि। बपु माने होता है शरीर अथवा योनि, योनि माने 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिसमें जीव जंतु थावरा लक्ष विंशति,
जलजा
9 लाख, 9 लाख प्रकार के जलचर हैं, थावरा लक्ष विंशति 20 क्रिमयो, क्रिमि है 11 लाख और
10 लक्षानी
पशव चतुर्लक्षानी, ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उसमें कोई भी स्त्री पुरुष अथवा स्त्री पुरुष तो हुआ कोयल कोकिली सुअर सुअरी, कीड़ों में भी दो, ये सब योनियां में स्त्री पुरुष हैं। एक तो 84 लाख प्रकार की योनियां, 84 प्रकार के योनियों में स्त्री और पुरुष, मनुष्यों में वर्ण, उन लोगों में भी वर्ण है, मछली में वर्ण नहीं है, कितना प्रकार का उनमें वर्ण है। वर्ण माने रंग भी ले लो, कोई लाल मछली, कोई काली मछली, कोई पीली मछली, कोई सफेद, कोई वेल, कोई कुछ, कोई कुछ, नहीं तो इतना लाख प्रकार की कैसे हो जाएगा। तो स्त्री या पुरुष में जैसा भी हूं, अब वर्ण आदि धर्म जत किसी भी धर्म में हूं या धर्म के बाहर भी हूं, ताते पुनः देहगत भेद, और उसमें भी शरीरगत भेद है। सत्व रज तमो गुण, सांप का कैसा गुण है, सात्विक न राजसिक न तामसिक, महाघोर तामसिक। बाघ का क्या है, गाय बैल का क्या है, सात्विक, और राजसी किन का है, कुत्ता, बाघ नहीं। तो तामसिक माने अत्यंत खुखार, दूसरों का प्राण लेते हैं, खून चूसते हैं, और सात्विक हैं गाय है बकरी है ऐसे सब, और दोनों के बीच वाले जो हैं ये राजसी। और मनुष्य में भी ऐसे ही सात्विक राजसिक तामस, भोजन में भी सात्विक राजसिक तामस, आहार विहार वस्त्र पहनने में स्वभाव में भी, ये गीता में
आहार शुद्ध सत्व
ये सब दिखलाया गया। एक दिखलाया गया है दैव गुण की, और एक आसुरी गुण दिखलाया उसमें, भाग अर्जुन को दिखलाया, जैसे सब चीजों में शास्त्रों में भी ऐसे, फलों में भी ऐसे, आहार में भी है, दान पुण्य में भी है, सब विषय में सात्विक राजसिक और तम, उनमें से भी मेरा हमारा कुछ हो, अश्रेत भेद पुनः ए रूप सहस्त्र प्रभेद, जे कोनो शरीर था कि मैं ऐसे किसी भी शरीर में रहूं, हमारा कोई आपसे प्रार्थना निहोरा नहीं है कि इनमें मैं न रहूं। जेवस्था गुण राखी ता अहंगता एवे तव पाए, अब जैसा भी हो मेरी अहंगता, अहंगता माने
मैं हूं,
मैं यह आपके चरणों में मेरा रहे, क्या जैसे मनुष्य हूं आपके चरणों का दास, कीट पतंग हूँ देवता हूँ तभी आपके चरणों में हूँ, जहाँ कहीं भी रहूँ बस आपके चरणों में मेरी अहंगता रहे और ममता भी आप ही के चरणों में रहे। स्वपिलाम प्राणेश्वर, हे प्राणेश्वर मैंने अपना सर्वस्व अहंगता और ममता आपके चरणों में मम बोली, अतः पर आपकी छूना रही लोदा, और आपके अतिरिक्त आपके चरणों के अतिरिक्त और मेरा कोई चीज है अब कोई कुछ नहीं रहा, अब मेरा कोई दाय नहीं, दाय मैंने
दायित्व,
बस आपको मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा हो आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। ऐसा कहना तो सहज है, भगवान के चरणों में ऐसा आत्मनिवेदन करना सहज नहीं, किंतु हो जा हो सकता है। जिसका हो जाता है वो अब भक्ति के दरवाजे पर हुआ है, क्योंकि आत्मनिवेदन उसमें है ना शरणागति, इसलिए शरणागति के लिए सब कह रहे। निबद्ध मूर्धांजलि रेश जाचे निरंद्र दैन्योन्नति मुक्त कंठम दयानिधे देव भवत कटाक्षम दाक्षिण्यलेशेन सकिन निसिंचन। कृष्ण करणामृत में का, कृष्ण करणामृत किसका लिखा हुआ? बिल्लू मंगल जी का। ये भाव भक्ति जब रागानुगा भाव भक्ति होगी तब इसमें आएगा, इसलिए मधुरे न समापयति, ये तृतीय जाम समाप्त करेंगे ना अब मधुर से कर रहे हैं। पहले लिया जामनाथ चाट्य का वैधी भक्ति का, और फिर तब लिए रागानुगा का, इनका बिल्लू मंगल जी का। निबद्ध मूर्धांजलि रेश ही बजा, हाथ में ऐसे ही कर करके सिर के ऊपर, हे प्रभु मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु। निरंद्र दैन्य, दैन्य कैसा? निरंद्र निष्कपट, निष्कपट दैन्य किसको कहते हैं? किसी वस्तु के लिए दीनता पूर्वक कोई चीज मांगते हैं तो वो दैन्य कपटता है, और भगवान के लिए ही केवल उनके शरणागति होने के लिए, उनकी भक्ति के लिए जब मांगते हैं तो वो निरंद्र दैन्य है। निरंद्र दैन्य उन्नति मुक्त कंठम, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके आपको निष्कपट रूप में हृदय की भावना को आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि